एक शख्स जिसके दिल में ईमान तो मौजूद है लेकिन अमल बिल्कुल नहीं है, वो मुसलमान होगा, मोमिन होगा, लेकिन गुनाहगार भी होगा। ये बात फुका ने तो कह दी, ये सही है या गलत इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसके नतायज नहायत भयानक निकले। आज ये है वो तिफल तसल्ली, तिफल कहते हैं बच्चों की छोटी तसल्ली। जैसे आप बच्चों को छोटी सी तसल्ली देते हैं ना, वो बहक जाता है या वो बहल जाता है, बच्चे छोटी सी तसल्ली से बहल जाते हैं ना, इस तरह आज बहुत सारे मुसलमान इस तसल्ली से बहले हुए हैं कि ईमान कुछ और है और अमल कुछ और है। आप अपनी जिंदगी में इसको लेकर तो देखिए, बस आप देखिए कि ये बिजली के तार है ना, आपका ये सारा सिस्टम बिजली से चल रहा है। आप कहते हैं देखो बिजली की बजाय पेट्रोल डाल देते हैं, वो भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो अक्लमंद को कहेगा अल्लाह के बंदो हैं दोनों एनर्जी प्रोड्यूसिंग थिंग्स, पर बिजली अपनी जगह, पेट्रोल अपनी जगह, बिजली की जगह डालिए जरा पेट्रोल, आग लगेगी ना। ईमान और अमल अपनी अपनी जगह पे नहीं है, एक ही जगह पे। आप यहां बैठ के ना एक छोटी सी एक्टिविटी करें, मैं नहीं कहती कि लोगों पे तनकीद करें, अपने घर के अंदर जितने अफराद हैं, आप लोग शादीशुदा नहीं है तो माँ बहन भाई बाप, शादीशुदा है तो ऑफकोर्स शौहर बच्चे, आप एक एक का एक खाना बनाएं। आप इस पे एक्टिविटी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत। ईमान का ग्राफ, मेरे शौहर का ईमान किस दर्जे का है, मेरे बेटे का, और बाज़ दफ़ा देखिए बेटे का ईमान शौहर के ईमान से ज्यादा होता है, मानिए ना मानिए, बाज़ दफ़ा बेटी कहाँ आगे चली जाती है माँ की निस्बत ईमान के अंदर। ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के एक वजीर आजम थे, मगरिब की नमाज का वक्त था, सब लोग नमाज पढ़ रहे थे और वह एक तरफ बैठे आराम से सिगरेट पी रहे थे, इसलिए कि उसे ये मालूम ही नहीं है कि ये मेरा यूं बैठ कर सिगरेट पीना कैसा है। अगर इसने अल्लाह के नबी की यह हदीस पढ़ रखी होती कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया, तो इसका रवैया मुख्तलिफ होता। अब किसी फतवे की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी सोच बदल गई है, हमने ईमान के दावे को एक खाने में और अमल को दूसरे खाने में रख दिया, इनके दरमियान कभी कोई रब्त कायम होने ही नहीं दिया। ये कहते हैं कि मैं समझता हूं कि कोताही उलमा की भी है, ये जुमला नोट कीजिए, और इट्स बिग बिग रियलिटी, क्या जिन्होंने दीन को समझने समझाने में बहुत सी गलतियां कर दी। आज के इस मुआशरे का ये ड्रॉबैक है कि हम दीन सिखाने वालों ने लोगों को या तो झूठी तसलियां दे दी, या हमने सख्तियां कर दी, या अपने फतवे और मुजाहदे और इज्तिहाद डाल दिए। बिलीव मी, असल लोगों को अभी तक पता ही नहीं है दीन के। और इससे भी बढ़ के बताऊं, एक तो वो लोग हैं ना जिनको दीन नहीं सीखना, जिनको दीन की कोई कदर नहीं है, उनको तो छोड़ दें हम फिलहाल बेचारे, वो तो मुफलिस हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनका दीन से ताल्लुक है, आपको पता है कि जब वो शौरी दीन पढ़ते हैं ना, तो वो ये बात कहते हुए रोते हैं कि 5 साल, 7 साल, 10 साल पढ़ के वो रूह नहीं मिली दीन की जो हमें चंद माह में मिल गई। आप में से कोई इसकी तस्दीक करता है? यकीन करें, मुझे जो दीन पढ़ पढ़ा के जो बात समझे, मैं कहती हूँ अल्लाह सर सजदे से उठे ही ना, बर्फ पे सजदे करें ना तो हक नहीं अदा होता हमारा, और तपती जलती रेत पे सजदे करें तो हम अल्लाह की कसम नहीं उठ सकते कि अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाया। थोड़ा सा पढ़ो, जाओ लोगों की खिदमत करो, मत बनो आलिम, मत बनो मुफ्ती, मत तुम अपने बड़े बड़े नाम और डिग्रियां रखो, तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी का रास्ता सुझा दिया, अब दूसरों को दिखाओ। ये है दीन, अकीदा भी यही है कि मैं अंधेरे में थी, अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया, चले अपनी गलतियां पता चली, इस्लाह की कोशिश थी है और रहेगी मरते दम तक, साथ दूसरों के लिए चिराग बनते जाओ, ये दीन है। वानजिर अशीरतक अलअक्रबीन, दूसरी वही में अल्लाह ने कह दिया कि अब पहले खुद पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बी का, और दूसरी में कहा अब दूसरों को रुकुम फानजिर। आज तक हमारे बहुत सारे दीनदारों को ये बात ही नहीं समझ आई, ग्रामर, तजवीद, सर्फ, नहव सब है, वेरी गुड, लेकिन सारे लोग 10 साल नहीं लगा सकते आपके मदरसे में। खुशकिस्मत है जो लगाएं, फिर उनको आप आगे भेजिए, फिर इस पे ना रोकें, ये तो आपने भी ग्राउंड प्रिपेयर की है, फिर उनको भेजें आगे और पढ़ें इदारों में, और जाके मक्का में पढ़ें, इधर उधर पढ़ें, फिर वो रिसर्च का काम करें। लेकिन जो हमारे आम जैसे दुनिया में फिरने वाले लोग हैं, उनको तो ये सिखा दो कि तुम गलत चल रहे हो, तुम्हारी नमाज ठीक नहीं है, तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है, ठीक करो और करें। आपको तो शायद अभी इसका अंदाजा भी नहीं है, शायद अभी आपका वो इदराक और वो फहम बना नहीं कि अल्लाह ने आपको दौलत कितनी बड़ी दी। मैं उन लोगों को जब रोते देखती हूँ कि जो कई कई साल पढ़ के आते हैं और फिर कहते हैं कि वो रूह जो एक पारा पढ़ के तफसीर से मिली वो आज तक 8-10 साल में मिली नहीं, तो आप भी भटक रहे होते कहीं तो अच्छा था, अभी तक आप किसी किनारे पे ना खड़े होते। आप कहते अभी तो मरी अपनी नहीं हुई, और अपनी होने के अंदर ही इतने हालात पतल चुके होते हैं। मैंने नहीं, सैकड़ों लोगों को मदरसों से फारिग होने के बाद उनमें से 50% से ज्यादा को भी मैंने तबलीग करते हुए नहीं देखा। फिर हालात बदल जाते हैं, जिंदगी जाती है। मैं ये नहीं कह रही वो गलत करते हैं, ये भी नहीं मैं कह रही कि 5-10 साल किसी मदरसे में ना पढ़ें। मैं कहती हूँ आप किसी को 5-10 साल पढ़ाएं, उसका दिल नुचड़ाओ, उसके खून चेहरे पे उतरा दिखे, उसका दिल गोश्त का एक वो तड़पता हुआ टुकड़ा हो कि फल अल्लाह का बाख नफ्सा का। अगर आप बेहिस है ना अभी भी आपको वो तड़प नहीं है, वो तकलीफ नहीं है दुनिया की, तो दीन नहीं आया आपके अंदर। ये कभी नहीं हो सकता कि दीन कहीं और पड़ा हुआ है और ईमान कहीं और है और अमल कहीं और है, नामुमकिन है। सच्ची तड़प पैदा होती है, और दूसरों की हिदायत की तड़प ना लगना अपनी हिदायत से दूरी की निशानी है। कभी आप भी तो सोचते ही होंगे ना कि क्यों हमारे मुल्कों के हालात नहीं बदलते, मस्जिदें मदरसे इदारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, तसव्वुर नहीं कोई कर सकता। अमेरिका में आप देखिए 15-15 मील दूर जाके लोगों को नमाज पढ़नी पड़ती है, बाज़ स्टेट्स ऐसी भी हैं जुमा पढ़ने के लिए दूसरे टाउन में जाना पड़ता है, और आपकी एक गली में मस्जिद है, दूसरे कोने में फिर मस्जिद है, लेकिन वो रूह नहीं मिल रही, दीन नहीं है। जब तक हम अपना दिल इस पे नहीं लाएंगे ना, इस नेमत की कदर नहीं करेंगे, बात ही नहीं बनेगी। अभी रिसेंटली जो हमारा ट्रिप था पाकिस्तान का, यानी ये मेरी जिंदगी का मैं कहती हूँ एक यूनिक एक्सपीरियंस था। आप मेरी इस बात को समझें ना समझें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि मेरे इस ट्रिप की जो स्पेशलिटी थी ना इस साल, वो वर्ल्ड वाइड फैले हुए वो स्टूडेंट्स थे कि जो खुद कुरान से जुड़ चुके हैं। मैंने जो तड़प देखी है लोगों की, और जब वो दर्स के बाद आते थे मेरे सामने, तो वो नाम है ना जो इर्द गिर्द चंद साथियों के, सबके तो नाम भी नहीं मुझे आते, मैं फलां की बहन हूँ, मैं फलां की खाला हूँ, मैं मामी हूँ, ये हर आने वाले 2-2, 3-3, 4-4 सौ लोग भी थे एक एक दर्स में, मैं उसकी खाला, मैं उसकी फूफो, मैं उसकी भाई, आप कैसे बस क्या बताएं, और ये और वो दूसरे शहरों से, यानी लोग जहाज़ों पर भी सफ़र करके बाज़ दफ़ा दूसरे शहर से दर्स सुनने आए, सिर्फ इसलिए कि हमारी वो अमेरिका में बैठी, वो कैनेडा, आपके नॉर्वे के साथ बीसियों स्टूडेंट्स यहाँ के लोग थे जिनकी कोशिशें इस साल पाकिस्तान में काम की, खानदानों के खानदान उमड़ उमड़ के आ रहे हैं कि वो हमें कहती हैं आप जाएं हमारी फलां आई हुई आप जाके सुने, और उसमें से 80% इस वक्त व्हाट्सएप के थ्रू क्लासेस से जुड़े हैं। कि इवन अगर एक दर्स मैं याद करूं अपना, एक शहर में था तो एक स्टूडेंट है हमारी कहीं भी, अब मैं नाम कहीं कभी नहीं लेती, मेरी नजर में मैं उनको ये नहीं समझती कि अपने हिसाब से वो बहुत ज्यादा मुझे फील हो कि अपनी जगह पे वो एक्टिव स्टूडेंट है, अच्छी हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन यकीन करें मैं कहती हूँ वन ऑफ द बेस्ट दर्स था पूरे पाकिस्तान के ट्रिप का जिन्होंने अरेंज किया था। हर बंदी के नाम मुंह पर उस एक स्टूडेंट का नाम था, वो मेरी खाला है, मैं उनकी खाल बहन की बहू हूँ, ये मैं उनकी भांजी हूँ, मैं फलां हूँ, ये भाई आप सब जुड़े कैसे, वो एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ, आपने जो कुछ भेजते हैं वो अपने खानदान को उसमें ऑडियोज भेजती हैं, और क्या वो दर्स था और क्या वो एटमोसफियर था उनका वहाँ, क्रीम ऑफ द सोसाइटी, कि जिनके मुंह पे अब ये बातें हैं कि अब हमने यहां आपको ब्रांच बना के दिखानी है। एक बंदी की तड़प कहां दूसरों को ले गई, ना उन्होंने कोई डिग्रियां की होंगी, मुझे तो ये भी नहीं पता उन्होंने उनके टेस्ट भी पूरे हैं कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो पूरे तफसीर का स्कोर अभी तक कर भी चुके नहीं, पर तड़प आ गई। याद रखिए बेहिस लोग, जिंदगी जाया करने वाले लोग आज गम में चले जाए कि ईमान नहीं है, आपको खबर मिल जाए ना कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है आप फेंट हो जाएंगे, आप कहते हैं विटामिन डी नहीं है, ये गोलियां खाओ ये कैप्सूल खाओ, जिस दिन ये खबर मिल जाए बंदे को कि मेरे अंदर ईमान कोई नहीं, मुझे बताएं यहां से उठ के जा सकते हैं ये मस्जिद तक, चाहे वो 15 कदम हो, जाता ही नहीं है वो ईमान, वो कदम ही नहीं उठते अल्लाह के घरों की तरफ जब अंदर ईमान नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि जो ईमान आज तुम्हें यहां से मस्जिद तक नहीं ले जा रहा, कल वो तुम्हें पुल सरात पे कहां से उठा के ले जाएगा। कदम तब ही नहीं उठते नेकियों में, वल्लाही कसम नहीं खाती, फिर भी खा रही हूं आपके सामने, कि कदम कोई नेकी की तरफ उठ ही नहीं सकते जब तक अंदर से वो फोर्स ना उठे, कुछ कर लो कुछ कर लो, वक्त कम है, जिंदगी थोड़ी। और खुशकिस्मत है वो लोग को करना चाहे तो उनको कोई रोके ना। आज तो लोग हाथ खींच दें। मेरे पास ऐसी सिस्टर्स आई, एक ऐसा कोई ग्रुप था कहीं, थोड़ी सी उन्होंने कोशिश की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरा दिया, जो भी कर सकते, जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विस तो हम भी कोई नहीं दे सकते। बाद में दर्स के बाद वो आई तो कहने लगी कि मैंने कितने लोगों की तरफ हाथ अपना बढ़ाया आज तक, लेकिन हर जगह सियासत, हर जगह जारादारियां, नामों की जंग है। आप लोगों को तुम जानते भी कोई नहीं थे, नाम ले रही थी नूरुल कुरान का, पर जो सिर्फ इस एक प्रोग्राम को अरेंज कराने में आपके ऑनलाइन साथियों ने और आपके जो कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने हमारी मदद की, कहने लगी बैठे बात करें, मैं ये पूरी ब्रांच आप लोगों के इदारे के साथ करना चाहती हूँ, मैं फितना क्यों खड़ा करके चली जाऊं। बाद में पता चले हमारी ब्रांच वो ले गए, ये ले गए, भाई हमें क्या, जो कर रहे हो करते रहो, सिर्फ ये बता रही हूं कि लोग तरसते हैं कुछ गाइडलाइन दे दें, वल्लाही गाइडलाइन कुछ बता दें, थोड़ी बात। एक वक्त में दो दो सुबाने अगर लोगों की हो ना, तो लोग उस 5 मिनट से फायदा उठाना चाहते हैं कि आपसे ये पूछ लें, ये बता दें, ये गाइड करें, ये कर लें, क्योंकि ये मौका हमें फिर नहीं आएगा। इतनी भूख है दुनिया में। और ये मैं आपको किसी नॉन मुस्लिम मुल्क की कहानी नहीं सुना रही, ये हमारे प्यारे पाकिस्तान की कहानी है। मैंने कहा आप लोग मुझे अगर कहते हैं ना कि पाकिस्तान में आके काम करो, तो मैं इसको अपनी बेइज्जती समझती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो अल्लाह की रहमत से सैकड़ों इदारे मदरसे मौजूद हैं। मैं खुद रिकमेंड करती थी उनके पास जाइए, उनकी ब्रांचें उनके हैं, उधर जाइए, कोई है इस शहर में तो जाइए पढ़िए, को हमने क्या तीर मार लेना है आके इधर, हमें कौन सा इतना अच्छा काम करना था। लेकिन इसके बावजूद लोग तड़पते हैं, कितनी खुशकिस्मती है कोई हमें बता दे, कोई पूछ ले। तो याद रखिए इस सारी बात जो अभी की है ना, आखिरी इसका खुलासा ये ले लें कि दिल में ईमान हो तो बंदा भागता है ना, थकता है ना, भूख ना नींद ना परेशानी हुआ ही कोई नहीं, थकन उतर गई हुई कोई नहीं थी, खा लिया कुछ भूख लगी कोई नहीं थी, कुछ रेस्ट कर लिया अपसेट हुआ ही कोई नहीं। और इसके बरक्स निरी बेजारगी, लोगों को आप देखिए शॉपिंग करने जाते हैं अपने काम के लिए और वापसी पे सर पे बाजू रखा होता है, थक गए टूट गए सर में दर्द, क्योंकि आप दुनिया खरीदने गए थे। मैं कह सकती हूँ कि इस पूरे ट्रिप में, पूरे एक महीने का ट्रिप था 9 से लेकर 9 तक का, इतना करीबी प्रोग्राम था घर में, यानी कि मैं कहती हूँ कि ख्वाब देखे होते हैं जिन प्रोग्रामों के लिए। और जिस दिन उस बच्चे का निकाह था मैं उस दिन भी उस शहर में नहीं थी, और वो कह सकते हैं आप कैसी खाल हैं और आप कैसी हैं, मैं कहती हूँ मैं ऐसी हूँ, लेनी है कोई और ले लो, मुझे बुलाया किसी ने मैंने जाने। उस दिन 2 दर्स किए हमने, एक गुजरा में किया एक फैसलाबाद किया, और वापस जब पहुंचे तो वो निकाह का सब खत्म खत्म, सब चले जा चुके। भाई मेरे बगैर निकाह तो हो गया मुझे पता है, पर जहां आज 2 जगह अल्लाह ने थोड़ा सा काम ले लिया, ये शायद आज वहां ना होता, मुझे कोई फिक्र भी नहीं, परवाह भी नहीं। चंद घंटे मैंने उस पूरी शादी को दिए पूरे ट्रिप में, वरना आगे जाते हैं तो दिनों के हफ्तों के अतबार से वहां रहते हैं, इस दफा होश नहीं। मैंने अपना सामान आखिरी दिन खोला क्या, अब सीधा करके देखूं क्या लेना है क्या छोड़ना है, पूरा वक्त अपना जो यहां से बैग गए थे वो पूरे खुले ही नहीं, जो हाथ चीज आई पकड़ी आगे चल पड़े चल पड़े। खुशी थी, कोई गम तो नहीं है, ये मैं कोई एहसान तो नहीं जितला रही, डर लग रहा है कि अल्लाह ताला मेरी ये नेमत ना छीन ले। आखिरी दिन भी दर्स कोई नहीं था, लेकिन किसी ने एक दिन पहले लिया, 2 दर्स किए आखिरी दिन भी आने से पहले, और रात को फ्लाइट है मिडनाइट की, और रात 7-8 बजे तक हम सिर्फ वहां से फारिग हुए, और वो जो दर्स था वो उसके क्या ही कहने। तो याद रखिए जिंदगी में अपने ईमान को चेक करें, आप सब छोड़ दें, अपने ब्लड प्रेशर छोड़ दें, अपना वेट भी चेक करना खुदा के लिए छोड़ दें, वो आपकी हेल्थ बेकार है जो आपको अल्लाह के रास्तों में लाने से रोक दे। आपकी स्मार्टनेस, आपकी डाइट, आपका हुस्न, आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी जाए सब अगर अल्लाह ताला के रास्तों से रोकता है, नमाजें छुटती हैं अगर अल्लाह का काम छुटता है, ये आपका अपना नुकसान है। इस बात की खबर है कि अल्लाह को ईमान वाले दिल चाहिए, तो मुझे आपको इस बात को देखना है। तो यहां ये जुमला नोट कर रहे, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि ईमान का दिल में मौजूद होना अपनी जगह पर दुरुस्त, लेकिन इकरार बिल लिसान और अमल बिल जवारेह के दरमियान जो रब्त कुरान ने कायम किया वो लाजिम है। 38 38 टाइम्स कुरान पाक में अल्फाज आए हैं, आमनू व अमिलु सालिहाती, ईमान लाए और आमाले सालेह किए। क्या कहा? आमनु व अमिलु सालिहात। आगे बल्कि इसकी बड़ी डिटेल हम पढ़ेंगे कि आप पढ़ के सुनते हुए हैरान हो जाएंगे कि ईमान असल में है ही अमल सालेह का नाम, क्योंकि अल्लाह के नबी की हर है मोमिन वो नहीं ये नहीं, मोमिन वो है जो झूठ नहीं बोलता, मोमिन मोमिन यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ मोमिन इज विद गुड डीड्स। ये नहीं कहा कि मोमिन वो है जो 500 बार ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ दे, मोमिन वो है जो मरे तो उसके साथ राहदारी पे 1000 दफा कलमा पढ़ा जाए, और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोमिन वो है जिसके ऊपर कलमे वाली चादरें डाली जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की चादर, और मोमिन वो नहीं है जिसकी कब्र पे बैठे हाफिज कलमे का विर्द करते रहे। मोमिन वो है कि आमनु वामिलुस्सालिहात। और इसी में याद रखिएगा कि इस्तकामत है। आप कहते हैं ये कब तक करना पड़ेगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद लिखिए अपनी बुक में, आखिर कब तक? चलिए एक दफा कर लेते हैं आमनु के साथ अमल सवाले। बस आप इसको अपने बिल्कुल ठेठ अंदाज में यूं सोचिए कि अच्छा भाई मैं ईमान ले आई हूं और मुझे अमल सवाले करना है, तो फिर मैं होगी ना मोमिन। तो एक दिन हो गई, दो दिन हो गई, रमजान में हो जाऊंगी, फिर मैं उमरे पे जाऊंगी तो हो जाऊंगी, फिर मेरे घर कोई मुसीबत आएगी तब भी मैं मोमिन हो जाऊंगी, तो फिर क्या मेरा ईमान वैलिड है? कितनों को मेरा सवाल समझ आया? सवाल समझ आया कि नहीं? हाउ मेनी टाइम, जैसे आप कहते हैं मास्टर्स करना है तो आप कहते हैं 16 साल चाहिए बस, एक दफा 16 साल ये करके पढ़ के पेपर दे दें, देन फाइन। फिर आपको सारी जिंदगी को ये नहीं कह सकते आपने मास्टर्स नहीं किया, या बाद में अगर आपने पीएचडी नहीं की तो आपका मास्टर्स वैलिड नहीं रहा, ऐसा नहीं होता ना। मैट्रिक आपने कब किया? 10-12 साल में कर लिया। अब कभी कोई आपसे मैट्रिक की डिग्री छीन सकता? इवन अगर आपने मेडिकल भी कर लिया, इमेजिन करें 20 साल लगे आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल गई, आप प्रैक्टिस करें ना करें, डॉक्टर्स को देखें ना देखें, आपका क्लिनिक हो ना हो, किसी हॉस्पिटल में जॉब करें ना करें, नाम डॉक्टर का लगा और जाली नहीं है अगर आपकी डिग्रियां वो दीवारों पे 6-7 सर्टिफिकेट लगे हुए हैं फलां कॉलेज फलां स्कूल के, लेकिन आप डॉक्टर साहब हैं। ये अलग बात है कि अब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो लोगों को फायदा नहीं देते। यही सवाल मेरा इधर आपसे है कि ईमान का सर्टिफिकेट लेने के बाद ये वैलिड कब तक रहता है? क्या एक दफा कर लिया आमनतु बिल्लाही खत्म हो गई बात? नहीं, इसका फिर अगला स्टेज इस तरह ना, आप अपनी बुक में एक एरो डाल दें। अभी तक दो चीजें देखी हैं, ईमान और अमल सवाले। ईमान लाने के बाद अमल सवाले करना पड़ेगा। जितना स्ट्रांग अमल सवाले होगा ये स्ट्रांग ईमान की अलामत है। जैसे मजबूत दिल होता है ना तो बंदा ज्यादा भाग लेता है, वजन उठा लेता है, चलता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। और अगर ये तीन काम ना करें तो आप कहते हैं असल में इसका दिल कमजोर है, हार्ट पेशेंट है। बिल्कुल इसी तरह ईमान का अगला दर्जा अमल सवाले था ना, तो इसकी आगे थर्ड एरो लगा लीजिए, इस्तकामत। एक साहबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमा दें जिस पर अमल करके मैं जन्नत पालूं। अच्छा, हमें कोई कहता तो हम क्या कहते? वो फुला आया था ना, वो 1001 बार पढ़ना, और पानी पे फूक के ना वो सारी जन्नत वाली आयतें ना वो पी लो, यही कहते ना। अच्छा, ज्यादा ज्यादा हम क्या कहते? उमरा कर लो, हज पे चले जाओ। हम तो कितने गुर दिखाते ना वजीफों के और कुछ अमलों के। अल्लाह के नबी आप देखिए, दो जुमले हैं एक ही में डले हुए, कुल आमंतु बिल्लाह, यहां कौमा लगा ले, कह दो कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर। यह है आपका अपना अमल, आपकी अपनी नरिशमेंट है। फिर तुम मस्तकीम, फिर इस पे जम जाओ। इस्तकामत में कियामत है। क्या पता चला कि इस्तकामत की बुनियाद ईमान और अमल सवाले। इस्तकामत दावे में नहीं होती, यानी आप मुस्तकिल दावा नहीं करते, बल्कि इस्तकामत तो अमल में होती है। बात वाज़े? इस्तकामत की दो अहम बुनियादें हैं, एक ईमान और दूसरा अमल सवाले। इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। ईमान कोई सुनी सुनाई बात का नाम नहीं, बल्कि एक शौरी अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दीनु अल मुआमला, दीन मुआमले का नाम है। यानी इसको हाईलाइट कीजिएगा, معاملات کے درست ہو جانے کا نام دین ہے. اگر آپ کے معاملے درست ہیں نا, ڈیلنگز ود پیپل, ریلیشنز, تو آپ کا دین درست ہے. صدق اور امانت کا نام دین ہے. یہی وجہ کہ اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے دو لقب تھے, سب کو یاد ہوں گے, بول دیں, صادق اور امین. صدق کہتے ہیں تھیوریٹیکل چیز کو, یعنی ایک سوچ ہے نا, سچائی کی سوچ. امانت اس کی عملی تصویر ہے, یعنی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. کیا پتہ چلا, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. اگر آپ صدق اور سچائی کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں تو اسے امانت کہتے ہیں. نوٹ کیا آپ نے اس کو, صدق اور سچائی کے مطابق عمل کرنا. کیا مطلب ہے صدق کے؟ آپ کا فیئر ہونا, سچا. سچائی کیا ہے؟ ریسپانسبلٹی, یعنی جو بھی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں نا, آپ اس کو پورا کریں تو آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ پوچھا تھا, کیا میں نے امانت کا حق ادا کر دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا کہ ادیتا, یس, بلغت و ادیتا, میسج دے بھی دیا اور پہنچا دیا. تو کیا پتہ چلا کہ ایمان کے بارے میں نہیں بلکہ پورے کے پورے دین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ معاملے کی درستگی کا نام ہے. اتنی بات پہ ہم رکتے ہیں اور سوچیں ذرا ہم سب, کیا میں سٹل ایمان والی ہوں؟ ہم کہتے ہیں ہاں آج سے 10 سال پہلے الحمدللہ ایمان پورا ہو گیا تھا, ہاں آج سے 10 سال پہلے میں نے میٹرک کیا تھا, یہ بات تو مانیں گے لوگ. لیکن کوئی آپ کی اس بات پہ ایمان لے آئے کہ بھئی آپ 10 سال پہلے مومن ہو گئی تھیں, وہ کہے گا آج کیا ہے. تو جب تک استقامت نہیں ہوگی, اور یہ استقامت کب تک؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, مرتے دم تک. کیا کہا؟ حتی یاتیک الیقین, اے نبی جب تک آپ کو موت نہ آ جائے تب تک یہ کام کرتے رہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی سے خیر پھیلے گی. ساری بات جتنی ابھی ہم نے کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ایمان لفظوں کا کھیل نہیں ہے. ایمان کا تعلق ہے عمل صالح سے, اور عمل صالح کب تک؟ مرتے دم تک. اصل دولت استقامت کی ہے, اور استقامت لفظوں میں نہیں آتی, عمل میں آتی ہے. آپ مستقل خود کو ایک اچھا انسان کہتے رہیں لیکن اگر آپ بنیں گے نہیں تو وہ اتنا ہی جھوٹ ہوگا.